नमस्कार दोस्तों, मोबाइल एनिस में आपका दोस्त योगेश। और हमारा आज का विषय है युद्ध में भी धर्म की नफरत, पलायन, भारतीय मीडिया। जैक कॉन जॉर्ज मास्टर ऑफ नन हर ने बनने वाले पत्रकार को सबसे पहले यह एक वाक्य सिखाया जाता है, पत्रकार को आम मसलों का जानकार होना चाहिए, विद्वान नहीं। तब जाकर वह आम नागरिकों से जुड़े समस्याओं को पहचान कर अपने और उनके लिए काम कर पाएगा। आज हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए लखनऊ हाईकोर्ट परामर्श केंद्र के मध्यस्थ एवं इसी के साथ उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट परामर्श केंद्र के मध्यस्थ एवं कांग्रेस उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधि विभाग के कोर कमेटी के सदस्य एडवोकेट इंद्र प्रताप सर जुड़े हुए। सर, मोबाइल एनी पे स्वागत सर आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार
जी सर। सर, युद्ध में भी नफरत तलाशता भारतीय मीडिया, कितना सही या गलत दिखते सर?
देखिए, युद्ध जहां तक की बात है, युद्ध जो है दुनिया में जितने भी युद्ध हुए उनमें से अगर गिना जाए तो सबसे ज्यादा युद्ध जो है वो धर्म के नाम पे हुए, और धर्मांधता जो है उसी धर्मांधता में कहीं ना कहीं जा करके जो है शांति का भी संदेश दुनिया दुनिया को प्राप्त हुआ। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि जैसे सम्राट अशोक महान, बहुत महान थे, उनके जमाने में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, और ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि जो है अशोक के मन में युद्ध को लेकर के बहुत बड़ी, मतलब अंदर से उनके मन में बहुत बड़ी ग्लानि हुई, और उन्होंने ये महसूस किया कि युद्ध जो है वो दुनिया में ठीक नहीं है, युद्ध की जगह शांति होनी चाहिए, स्नेह होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। लेकिन तमाम धर्मों का धर्म धर्म के जानकारों को बुलाया उन्होंने, लेकिन उनके मन में शांति नहीं प्राप्त हुई। और जब जिस समय महात्मा अशोक के समय से लगभग 200-300 साल पहले महात्मा बुद्ध का जो ये धर्म था, बौद्ध धर्म, ये लुप्त प्राय हो चुका था, और उन्हीं के एक संत ने उनसे कहा और पूरा उनके मन को, उनके मन में जो जो बातें बताई उनसे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और उनको ये लगा कि यही सबसे बढ़िया धर्म है जो शांति, प्रेम, स्नेह और तमाम चीजों को बताता है। तो वो उन्होंने पूरी दुनिया में फिर बौद्ध धर्म का प्रचार किया, और जो बौद्ध धर्म आज तक पूरी दुनिया में है, भारत में है, हर जगह पर है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो धर्म, जो जहां पर धर्म के नाम पर कोई चीज होती है, धर्म के नाम पर कोई युद्ध होता है, तो उस चीज को खुलकर स्वीकार करने की बात है। उसको हम अप्रत्यक्ष रूप से किसी जो है पता लगा दूसरे एजेंडे पर मोड़ दें। आज दुनिया बहुत विकास कर चुकी है, और दुनिया का हर आदमी ये जानता है कि जो अभी देखिए जैसे यूक्रेन में और रूस से युद्ध हो रहा था, इसी बीच में आला ऑफ सडन अचानक जो है एक मसला खड़ा हो गया कि साहब हमास ने उन इसराइल के ऊपर रॉकेट दागे और कुछ लोगों को हत्याएं हुई और इधर उधर हुआ, फिर पता लगा कि ये एक बहुत बड़ा दुनिया का विषय बन गया, एक धर्म युद्ध छिड़ गया है। और इधर अपने देश में, हमारा देश जो है वो पंथ निरपेक्ष है, मैं इस पर स्पष्ट रूप से कह देना चाहूंगा कि पंथ निरपेक्ष होने के नाते अपने देश में दुनिया से सबसे कम युद्ध होता है। धर्म युद्ध तो अभी तक नहीं छिड़ा, लेकिन छुटपुट घटनाएं जो लोग राजनीतिक के लोग हैं उसका लाभ लेने के लिए जो है कहीं ना कहीं उठाया करते हैं, तो उसको पब्लिक जानती है कि ये चुनाव आ गया है या चुनाव आने वाला है या कोई ऐसी चीज होने वाली है वहां पर, तो पॉलिटिकल लोग उसको इनिशिएट कर रहे हैं, परसू कर रहे हैं। तो जैसे आप कह रहे हैं कि जो हमारे देश की मीडिया है वो जो है हमारे देश की मीडिया में इस समय पूरे सारे चैनलों में एक ही चीज चल रही है कि साहब अभी तो यूक्रेन वाला मामला चल रहा था, अब इस समय इसराइल और फिलिस्तीन और हमास का चल रहा है। भारत सरकार जो है वो फिलिस्तीन को मान्यता देता है और मान्यता दे भी रहा है उसको, और हमास का विरोधी वर्तमान सरकार हमास की विरोधी है, और वो हमास जो है वो मुस्लिम सपोर्टर है, मुस्लिम जो है वो फिलिस्तीन का समर्थक है, और इसराइल जो है वो यहूदी देश है, उसका अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, और जो वहां का जो भी पॉलिटिकल एजेंडा है, जो पॉलिटिकल कह रहे हैं सॉरी, वो जो धार्मिक एजेंडा है रामल्ला को लेकर के और तमाम वहां का पवित्र स्थान है जो वहां का, उसको लेकर के युद्ध चल रहा है। तो दुनिया धर्म के नाम पर दो भागों में इस समय बटी हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि हम जहां पर रह रहे हैं, अगर वहां पर कुछ ऐसा कोई संकट है, जैसे अभी हमारे यहाँ मणिपुर में जो है तमाम ऐसी चीजें आई जिसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जो है वो सांकेतिक रूप से कुछ कहना पड़ा, फिर उसके बाद तमाम चीजें प्रकाश में आई, और उसके बाद वहां क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है कि इस समय जो है पूरे भारतवर्ष में मणिपुर जो है वो सबसे शांत राज्य है, मीडिया बिल्कुल मौन है। मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग, बड़े बड़े बुद्धिजीवी है, वो उस पर कोई चर्चा नहीं, कोई इस पर विचार विमर्श नहीं, उसकी समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ मुझे ये भी नहीं मालूम, क्योंकि जो है मैं जो है वो सोशल मीडिया में फेथ नहीं रखता, या तो अखबार में कोई चीजें आवे या नेशनल चैनल पर आवे तभी उसको मैं रिकॉग्नाइज करता हूँ। मुझे ये नहीं मालूम कि मणिपुर में शांति है कि अशांति है, क्या है कैसा है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ना ऐसी कोई घटनाक्रम हमको ये देखने को मिलता है कि साहब अखबार में कोई चीज निकल रही है या मीडिया हमारी बोल रही। तो आपका ये कहना, आपका ये प्रश्न उठाना बहुत जायज है कि हम दुनिया के बारे में तो बहुत चिंतित हैं, लेकिन अपने देश के बारे में, अपने देश में हो रही घटनाओं के बारे में हम मौन क्यों हो जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है कि जब हम मौन हो जाते हैं। जो पत्रकारिता की बात आप कर रहे हैं, पत्रकारिता जो है वो और बहुत कुछ अधिवक्ता, इनका धर्म एक ही समान है। कारण क्या है कि पत्रकारिता अगर आप निष्पक्ष स्वतंत्र ढंग से नहीं करते हैं तो जो है क्या कहते हैं कि वो समाज के प्रति तो आप जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं, अपने धर्म के प्रति जो आपकी पत्रकारिता का धर्म है और जिस ईश्वर की आप पूजा करते हैं उसके प्रति भी अन्याय कर रहे हैं। जैसे मैं अधिवक्ता हूं, अगर मैं किसी बहुत बड़े मुलजिम के खिलाफ किसी आदमी की मदद कर रहा हूं, तो अगर मैं डर जाऊं कि वो मेरी हत्या कर देगा, मुझे मार डालेगा या मैं मर जाऊंगा, तो फिर मैं उसका सपोर्ट ना करूं या उसकी धमकियों से डर जाऊं, मैं उसको सपोर्ट ना करूं, तो ये हमारे एडवोकेसी के खिलाफ है। उसी प्रकार से ये पत्रकारिता है। पत्रकारिता और एक ईमानदार अधिवक्ता और एक ईमानदार पत्रकार बनने के लिए व्यक्ति को अपने जान की कीमत की बाती हमेशा लगा के चलनी चाहिए कि कभी भी उसके साथ कोई भी घटना हो सकती है। लेकिन वो समाज में एक ऐसा संदेश और एक ऐसा क्या कहते हैं, एक ऐसा उदाहरण देने के लिए उसको हमेशा तैयार रहना पड़ता है। जैसे मैं देख रहा हूँ कि लोग फिलिस्तीन में हमारे पत्रकार हैं, भाई हैं हमारे जो है वो जा करके अपने जान की बाजी लगा करके बड़ी ईमानदारी के साथ, उनका घर परिवार कितना तनाव में होगा, और वो वहां से कवर करके यहाँ पर भेज रहे हैं और तमाम चीजें करते भी हैं, तमाम घटनाएं भी घट जाती हैं जिसका बड़ा कष्ट होता है, अफसोस होता है। लेकिन पता नहीं क्यों जो ये बात आप कह रहे हैं, ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि तमाम अपने देश में भी कुछ छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन उसमें क्या हमें तो नहीं ऐसा लगता कि हमारे पत्रकार लोग वहां जाते नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है कि जो दिखाने वाले हैं उसको दिखाते ना हो, कवरिंग तो जरूर करते होंगे। मुझे तो ऐसा मतलब नहीं लगता कि जो दुनिया में विदेश में जाके कवरिंग कर सकते हैं वो पत्रकार बंधु हमारे जरूर जाते होंगे वहां पर जो है कवरिंग करने, और वहां की चीजों को रखते भी होंगे, लेकिन उनको दिखाने की हिम्मत जो है वो हमारे बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं या जो हमारे अखबार हैं पता नहीं क्यों उसका मादा नहीं रखते हैं, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं पत्रकारिता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। जैसे आप भी एक पत्रकार हैं, आपने मुझसे प्रश्न पूछा और मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, तो हाँ
मेरा अगला सवाल यही था कि युद्ध में धर्म को देखना कितना सही और मानवता को प्राथमिकता देना कितना सही देखते हैं?
देखिए ऐसा है कि हर धर्म का, चाहे जो धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसका अंतिम लक्ष्य मानवता ही होता है। उसका अंतिम लक्ष्य होता है ईश्वर की प्राप्ति। कोई भी धर्म हो वो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है। कोई भी मानवता का धर्म, मानव जाति का कोई भी धर्म, वो चाहे जो है वो जंगलों में रह रहे आदिवासी हो, वो भी अगर किसी धर्म को मानते हैं तो उनका भी लक्ष्य होता है कि हम जो है अंत में ईश्वर को प्राप्त हो। तो ईश्वर को प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो है वो मानवता से खाली नहीं रह सकता। लेकिन जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है, जिनको धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है, या अपने धर्म की किताबों को जिन्होंने नहीं पढ़ा है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं, उसमें सबसे बड़ी गलती उनकी होती है। जो उस धर्म के बारे में जानते हैं और उसको इस ढंग से प्रचारित और प्रसारित करते हैं, वो अपने धर्म की अच्छाइयों के बारे में बताने के बजाय वो दूसरे धर्म की बुराइयों को बताते हैं, दूसरे धर्म की में क्या कमियां हैं उन कमियों के बारे में बताते हैं, बल्कि अपने धर्म की अच्छाइयों के बारे में नहीं बताते। मैं आपसे एक बात कहूं कि अगर सारे लोग सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे अक्सर जो है कोई कोई जो है वो मुस्लिम धर्म के खिलाफ लिख रहा है, कोई हिंदू धर्म के खिलाफ लिख रहा है, कोई सिख के खिलाफ लिख रहा है, मतलब जैसे वो उसके बारे में विशेष रूप से जानता है, उसका अध्ययन उस मामले में ज्यादा है, अपने धर्म में कम है, दूसरे धर्म के बारे में ज्यादा जानता है और सारी बुराइयां पेस्ट करता रहता है। हमारा ये कहना है कि आप ये लिखना शुरू करो, जितने धर्म के लोग हो अपने धर्म की अच्छाइयों के बारे में लिखना शुरू करो, हमारे धर्म में साहब ये अच्छाइयां हैं, और सारे धर्म की अच्छाइयां मिल करके जो है वो समाज को और मानवता को जो संदेश दे सकती हैं, वो संदेश इससे नहीं मिल सकता जैसे आज का पैटर्न चल रहा है। आज का तो पैटर्न ये चल रहा है कि साहब हमने जो है सही बताऊं तो मैंने कुरान नहीं पढ़ी है, लेकिन अब उसकी बुराइयां तमाम लोग लिखते रहते हैं, तो मैं तो नहीं समझ पाता, लेकिन मैंने जो है रामायण पढ़ी है। रामायण हमने लगभग अपने लाइफ में 2-3 बार तो कंप्लीट ही कर दी होगी, और गीता का मैंने अध्ययन किया है। गीता में मैंने स्वामी राम सुखदास की गीता पढ़ी है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की गीता पढ़ी है, पहले पढ़ी है जो है वो एक जो इस्कान के हैं संस्थापक उनकी गीता पढ़ी है, और जो है तो मतलब अध्ययन में मेरी रुचि रही तो मैंने धार्मिक पुस्तकों के बारे में अध्ययन किया है। लेकिन मैंने जो उसमें देखता हूँ, उसको देखने के बाद मुझे लगता है कि जब तक हम अपने धर्म के बारे में पूरी तरह पढ़ न लें और उसके बारे में जान न लें, तब तक जो है हमें दूसरे के धर्म के बारे में कहने का कोई अधिकार ही नहीं है। और यही मानवता है, मानवता यही कहती है कि अगर हमने अपना धर्म के बारे में पढ़ा है तो हमारा ये पहला फर्ज ये बनता है कि उसमें मानवता का जो संदेश है उसको हम लिखें। अगर लिखने का आज का युग में तो कोई भी आदमी लिख सकता है, फेसबुक पे लिखे, जो ट्विटर की जगह अब तो जेड क्या एक्स आ गया है, उस पर लिखे, और अपने कोई पुस्तक लिखे, कुछ भी लिखे। लिखने के लिए भारत में जितनी स्वतंत्रता है दुनिया में शायद उतनी स्वतंत्रता कहीं नहीं है। तो वो चीज लिखने का गौरव जो है वो लिख करके बताए कि साहब ये चीज हो रही है हमारे यहाँ, हमारी ये अच्छाइयां हैं, आपके धर्म में क्या अच्छाइयां हैं, आप हमें लिख के इसका उत्तर दीजिए, तो वो आपको उत्तर देगा। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ पर एक जो पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स में धर्म नहीं, राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए। धर्म में राजनीति वही होना चाहिए जहाँ एक धर्म के लोग रहते हों।
जी सर, मेरा एक संक्षेप में एक सवाल का जवाब चाहूंगा सर, कि देश की सत्ता के अनुरूप न्यूज़ को कवर करना और देश के शोषित वर्ग की ओर ध्यान न देते हुए उन्हें छोड़कर विश्व पटल पर विश्व की खबरों को कवर करना, कितना सही या गलत देखते हैं?
देखिए ये तो बिल्कुल गलत है, और कि साहब हम अपने देश की गरीबी, अपने देश के गरीब लोगों और अपने गरीब के उपेक्षित लोगों में हम सरकार कितनी मदद कर रही है, क्या कर रही है, ये चीजों का धरातल पर उसका क्या असर हुआ, इन सब चीजों को न दिखाना ये, और विश्व की जैसे हमारे जितने राष्ट्रीय चैनल हैं इस समय जो चल रहे हैं, जो एक तरफ से वो पूरी तरीके से ऐसे लग रहा है कि जैसे हम लोग जो है फिलिस्तीन के रहने वाले हैं या इजराइल के रहने वाले हैं या यूक्रेन के रहने वाले हैं, और साहब ये बम गिरने वाला है, वो गिर जाएगा, वो फट जाएगा, वो दग जाएगा, तो मतलब इस तरीके की चीजें हम देख रहे हैं, लेकिन जो हमारे देश की वास्तविक चीज है वो हम नहीं देखते हैं। और जो अगर कुछ हमें दिखाया भी जाता है तो ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे हमारे देश में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, चारों तरफ संपन्नता ही संपन्नता है, और उस एरिया को हमारा मीडिया कभी नहीं कवर करता जो बेचारे ठेले वाले हैं, खुमचे वाले हैं, या जिन्होंने क्या कहता है कि जो रोज कमा कर खाने वाले हैं उनकी क्या स्थिति है, जो 100 ग्राम दाल लेकर के और आधा किलो आटा लेकर के और साथ आधा किलो आलू और एक पाव टमाटर लेके घर जाते हैं, उनके बारे में दिखाने वाला कोई नहीं है और ना उनकी कोई सुनने वाला है। तो ये चीजें अब मीडिया में, मतलब मीडिया इनके बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, ये बात तो बिल्कुल सत्य है और इसका मैं समर्थन करता हूँ कि साहब उनको दिखाने वाला कोई नहीं है। जो बेचारे सुबह लेबर चौराहे पर इकट्ठा हो जाते हैं, वो क्यों इकट्ठा होते हैं, जहाँ हर शहर में कहीं ना कहीं लेबर चौराहा है, वहां से आप 200-400 आदमी खड़े हुए हैं, अगर एक शहर में मान लीजिए 6 चौराहे हैं तो आप मान के चलिए 2400-2500 आदमी ऐसे हैं जो बेचारे बिना काम के वापस लौट जाते हैं, उनकी जरूरत नहीं रहती है तो वो वापस लौट जाते हैं। किसी को किसी ने देखा कि ये स्वस्थ है, काम कर सकता है, उसको पहले लोग पकड़ लेते हैं। अगर आदमी दुबला पतला है तो उसका चयन नहीं होता, उसको लोग लेबर के रूप में अपने घर नहीं ले जाना चाहते हैं। ये हमारे देश की जो ये व्यवस्था है, ये मतलब बड़ा दुखद है, इसको भी दिखाना चाहिए। कभी कभी लेबर लेबर के नाम पे तमाम स्कीमें गवर्नमेंट चला रही है, तमाम चीजें बनाई है, फैलाई है, उसकी उन स्कीमों का उनको लाभ मिल रहा कि नहीं मिल रहा, कहीं कुछ नहीं है, बस ऐसा लग रहा है कि इस देश में आप बीमार हो जाएंगे साहब तो आपको मुफ्त में इलाज मिल जाएगा, अगर आप भूखे हैं तो आपको अन्न मिल जाएगा। काम क्या हो रहा है धरातल पर, किसान कितना परेशान है, मजदूरों का पलायन हो चुका है गांव से, एक भी किसान मजदूर कहीं कोई बचा नहीं है, किस तरीके से उसके बनियान में 72 छेद है और किस तरीके से वो जो है वो जनता को खिला रहा है अपने परिश्रम से, अपने सिस्टम से, इसको कोई दिखाने वाला नहीं है। ये इस बात से तो मैं पूरी तरह सहमत हूँ, काश मीडिया हमारी इसको दिखाए।
इंद्र प्रताप सर, जिन्होंने मोबाइल वाणी पर युद्ध में भी धर्म की नफरत खुलासा भारतीय मीडिया, इस विषय पर इंद्र प्रताप सर ने मोबाइल वाणी पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की। इंद्र प्रताप सर, मोबाइल वाणी को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
बहुत बहुत आभार आपका।
मोबाइल वाणी सबका दोस्त, धन्यवाद।